आज वेस्टइंडीज की नस्ल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब आपके बदन के ऊपर कोड़े पड़ते थे तो इतने सियाह निशान पड़ गए थे कि आपका जो स्किन का और आपकी बॉडी का जो कलर था इसके ऊपर माल का कलर तालीम आ जाता, कैसा मानता होगा। लेकिन फिर भी कहा कि एक कलमा जो एक बार पढ़ लिया है अब इस कलमा से मैं नहीं मिल सकता। इसके बाद उमैया इब्न खलफ ने कहा कि नहीं, घोड़े से पास नहीं आएगा। उसने फिर गरम गरम रेती अपने मकान के सामने डाली और नौकदार उसमें कंकरियां थी कि अगर आदमी चले तो भी उसको चुभे पैर में। ऐसी कंकरियों के ऊपर गरम कंकर के ऊपर लेटा देता था और पेट के ऊपर गरम गरम पत्थर रख देता, नीचे भी गरम ऊपर भी गरम, और इसके बाद फिर वो पैर के अंदर कोड़े मारता था। लेकिन हर मार के ऊपर वो कहता कि एक मरतबा कलेमा दिल के अंदर बेवस्त हो गया, अब मैं नहीं ले सकता। इसके बाद फिर वो गले के अंदर रस्सी डाल देता, रस्सी डाल करके बच्चों के हाथ में दे देता और बच्चों को कहता कि इसको पहाड़ों में ले जाओ और उसको घसीटो। बच्चे उसी तरह घसीटते जिस तरीके से एक जानवर को घसीटते, बेचारे चक्कर आते तो गिर जाते। अब नीचे पत्थर, नौकीले पत्थर हैं, जाहिर बात है कि अगर घसीटे जाए तो नीचे कितनी खराश आए और बदन कितना चिल्ली हो जाए। अब बच्चे अरब के जोशीले जवान और एकदम जाहिल किस्म के लड़के, वो उनकी इतनी बेगुरमती कर दे, लेकिन फिर भी बिलाले हबशी अहद अहद जो शब्द आप सुनते होंगे इसका नारा लगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मेहनतों के नतीजे में आजाद हो गए और इस्लाम के अंदर ऐसा मकाम पाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल कल रात में है जन्नत में तेरे खड़ाओं और तेरे जूतों की आवाज सुनी कि तुम उससे आगे चल रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कुर्बानियों के बाद। देखो एक कुर्बानी देकर के हमारे यहाँ एक जमात आई है, ये क्यों आए? ये हम जो गफलत और सुस्ती में डूबे हुए हैं कि एक ईमान वाला अपने आप को भी गफलत और सुस्ती से बाहर लाए और उसके मकसद को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर भेजा है अपने मकसद को समझे, और जो दूसरे मुसलमान गफलत के अंदर डूबे हुए हैं उनको भी अपने मकसद की पहचान कराए। अल्लाह तबारक व तआला दीन को दीन से जिंदा फरमा दे। और इसी नकलो हरकत की वजह से आज कुछ चेहरे हैं कि जो मस्जिदों के अंदर आते हैं, बाकी मौलाना आदर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बूढ़ों को मालूम है, लगता था कि मुर्तद हो जाएंगे। ऐसी हालत थी लोगों में, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि रमजान का रोजा क्या है, इन्हें मालूम ही नहीं था कि कलेमा क्या है, और इन्हें कुछ मालूम ही नहीं था कि बच्चों को कुरान की तालीम देना और बच्चों की तरबियत करना कुछ मालूम नहीं। देहातों के अंदर बेचारे फिरते धक्के खाते, इतनी मेहनत की, पुराने जमाने में सवारियों का इंतजाम भी अच्छा नहीं था और हर हर गांव के अंदर पहुंच करके छोटी छोटी मस्जिदों का इंतजाम किए, हर गांव के अंदर पहुंच करके छोटे छोटे कमरे बनाए ताकि मुसलमानों के मासूम बच्चे कि जिनके हालत पर रहम आता था कि बेचारे आगे चल करके दीन को समझेंगे या नहीं समझेंगे या फिर अपने मजहब पर बाकी भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा होता है। कई तो एक एक हफ्ते तक वो देहात में मुकीम रहते, तीन तीन चार चार दिन तक ऐसे देहात के जहां रात गुजारने में भी डर लगे, ये सब पूरा बेल्ट ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर बात डाली और ऐसी फिक्रों को लेकर उठे कि आज हमारे छोटे छोटे देहातों के अंदर बेहतरीन मस्जिदें दिखाई देती और छोटे देहातों के अंदर बेहतरीन मदरसे दिखाई देते और हमारे मासूम बच्चे तालीम हासिल करते। उलमा इकराम अपने वतन से बेवतन होकर के और अपने रिश्तेदारों माँ बाप को छोड़ करके ऐसी जगह पर हमारे मासूम बच्चों की फिक्र करें, मेरे भाइयों हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत है, ये मस्जिद नेमत है, मदरसा नेमत है, और हमारे बच्चों का बेहतरीन बात वो है कि जो हमारे बच्चों की कुट्टी के अंदर ईमान को व्यवस्थित कर देता और हमारे बच्चों की कुट्टी के अंदर कुरान को डाल देता है और उनको सही अल्लाह की मार्फत पर पहचान कराता है, ये सबसे सच्चा हमारे बच्चों का पावन है। तो इनसे सच्चा और पक्का कौन बाप होगा कि यहां रह करके हमारे बच्चों की फिक्र करते हैं तालीम और तरबियत की। तो मेरे भाइयों हमारे जिम्मे भी बहुत कुछ आता है, हमारे जिम्मे भी आता है, वरना कयामत के दिन अगर यही नस्ल हमारी जाय हो गई और अल्लाह की दी हुई सलाहियतें अगर उन्होंने बर्बाद कर दी, तो मेरे भाइयों कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा क्या हमारे बच्चों में आज देखो अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। छोटे छोटे बच्चों के हमारे मोबाइल हो जाते हैं, हर किस्म के खराफात मोबाइल की वजह से आते हैं, और जितने भी ऐसे बनाव बनते हैं लड़कियों के, और हर दिन अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे, हर दिन कोई नई खबर सुनते होंगे, कितनी बच्चों को तो हम लेने गए, तीन तीन दो दो चार चार बच्चों की औलाद की माएं जो गैरों के साथ भाग गई, इनको लेने हम गए, ऐसी जगहों पर गए, ऐसी जगहों पर गए कि ऐसा लगता कि शायद यहां से वापस जाना ही मुश्किल, और अपनी जान को हथेली में रख कर गए और कितने समझा करके वापस लाए कि चंद मिनटों के अंदर अपने ईमान का सौदा करें। अरे ऐसे प्यार कितना अंधा, फिर पूरी ताकीद की ताकीद के बाद कहां आकर खड़े रहे, मोबाइल के ऊपर आकर खड़े रहे, ये बच्चियां क्यों चली गई मोबाइल की वजह से, कि किसी तरह खैर मुस्लिम बच्चे से कॉन्टेक्ट हो गए, फिर अपने औलाद को भी भूल गई, अपने शौहर को भूल गई कि जिस शौहर ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बेहतरीन जवानियों को गला दिया और उनके नफ्स के चौचरों को पूरा किया, ऐसे शौहरों से बेवफाई की, और मासूम बच्चे कि जिनको अभी बेहतरीन माँ की तरबियत की जरूरत है और उनकी गोद उनके लिए पहला मदरसा है, ये सब कुछ छोड़ के भागती है। देखो ये सलाहियतें गलत गलत पैदा हुई, क्यों, इसलिए कि सही सलाहियतें उजागर नहीं की गई तो ये गलत सलाहियतें पैदा हो गई। इसलिए मेरे भाइयों आप जैसी आदत डालोगे वैसी आदत आपकी नस्लों में आएगी, आप अगर पाबंदी से मस्जिदों को आबाद करोगे आपकी नस्ल देख करके आपका देख करके आपकी नकल करेगी, आप जैसा दीनी माहौल उनको देख करके दुनिया से जाओगे वो भी अपनी नस्लों को वैसा ही माहौल देंगे। बाकी बेचारे कहने वाले आते हैं, बोलने वाले आते हैं, मेहनत करने वाले आते हैं, मेहनत करके चले जाते हैं, जब तक बड़े जिम्मेदार जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे वहां तक मेरे भाइयों हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और देखो आप हालात कैसे संगीन दिखाई दे रहे हैं, कितने नाजुक हालात, ईमान वाला जब भी ईमान से दूर होता है, दीन से दूर होता है, उस वक्त मेरे भाइयों जहालत पैदा होती है, इसके बाद फिर हालात खड़े होते हैं। इसलिए हमारे जितने भी बासलाहियत लोग हैं, जवान लड़के हैं, इनकी तो रात दिन की फिक्र है, आप गांव कितना छोटा है, मुख्तसर गांव है, बहुत आसान है, वो तो मुश्किल काम वहां होता है जहां आबादी ज्यादा फैली हो और जहां मुलाकातें करना मुश्किल होता हो, तो ये अलग बात है, ये तो बिल्कुल मुख्तसर गांव है, मुख्तसर लोग हैं, और हरेक आप जान पहचान वाले हैं कि हरेक एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ तो आसान है, बहुत आसान है काम करना, इसलिए ये जमातें आती हैं, तो जमा जमातों का भी हम साथ दें और जमातें भी मेहनत करें, दोनों की तरफ से जिम्मेदारी। अरे वक्त गुजारी इससे कुछ नहीं होता, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको काम में इतना मशगूल कर दें कि इनको बराबर निचोड़ दें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नुसरत ये नहीं कि आपने इनको चाय पिला दी, ये नुसरत नहीं है। नुसरत ये है कि उनसे आप काम लें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन माहौल पैदा करेगा। बाकी जुमा में तो वही होता है, देर से ही पहुंचते हैं। ये आदि साहब आप सब फिकर नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जिम्मेदार लोग हैं, इतने बासलाहियत लोग हैं। जुमा के दिन तो आप ऐसा माहौल बनाओ कम से कम कि अजान हो अजान तो आपका हर बच्चा, मासूम बच्चा भी, 7-8 साल का लड़का भी मस्जिद के अंदर होना चाहिए अजान के वक्त। अब आप अगर देर से आओ फिर खुतबा का टाइम हो, इमाम साहब बेचारे 2-5 मिनट कुछ कहना चाहेंगे तो क्या बोल सकेंगे और किनको सुनाएंगे? यहाँ कोई होगा ही नहीं तो किनको सुनाएंगे? सामने सुनने वाले भी तो कुछ होने चाहिए। अब बेचारे उनको बहुत कुछ कहना होता है और बहुत कुछ हमें भी, हम तो मोहताज हैं। हर आदमी दीन का मोहताज है, बड़ा से बड़ा आदमी हो वो भी अपने आप को यही समझेगा कि मैं दीन का मोहताज हूँ। और अगर वो समझे कि मैं मोहताज नहीं हूँ तो उमरा हो जाएगा। अरे मोहताज है, आप तो जल्दी कम से कम अजान के वक्त तो मस्जिद में लोग आ जाने चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये मासूम बच्चों को भी ताकीद से जुमा के दिन लाओ, अभी से वो आदि बनेंगे सुनने के, वरना फिर ऐसे काफिर बन जाएंगे कि 5 मिनट दीन की बात सुनना भी मुश्किल हो जाएगा। 5 मिनट में वो उठता जाएंगे। इसलिए आप कितनी मस्जिदों के अंदर ये माहौल देखेंगे कि उन मस्जिदों के अंदर लोग बात सुनने के आदी नहीं होते। इमाम साहब जैसे ही खड़े होते हैं इनको बगा से शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आदि ही नहीं बने सुनने। इसमें कान आदि बनते हैं, आदत पड़ेगी आपके अंदर, आदत पड़ेगी आपके बच्चों में, आदत पड़ेगी और यही हमारे बच्चे फिर सुनने के आदि बन जाएंगे तो फिर वो शौक से दौड़ते हुए जुमा के दिन जल्दी आ जाएंगे। और बाकी फजर की नमाज में क्या पोजीशन होती है? फजर में एक सब होते हैं, फजर की नमाज में इंशाल्लाह सब आएंगे। फजर की नमाज में आप देखो इंशाल्लाह आप कुछ और ही रौनक देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज से तो हमें बहुत सारे वादे किए हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए दुआ करो कि मेरा कारोबार चलता हो। ऐसे कितने आते हैं कारोबार चलाने के लिए ताबीज देते हैं, कारोबार चलाने के लिए वजीफे पढ़ते हैं, कारोबार चलता हो जाए और ज्यादा नफा हो उसके लिए कैसे बाज औरतें तो रोजे भी रखती है। अब जो काम अल्लाह को करना है वो काम बंदे कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के नबी ने सहाबी को फरमाया देखो तुम जहां तक हो सके बावजू रहा करो। अगर तुम बावजू रहोगे वजू के साथ तुम्हारा कारोबार ऐसा चलेगा कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी होने के बाद तुम दूसरों की मदद कर सकोगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तो सहाबी ने उस पर अमल किया। अब बावजू वजू के साथ हम कब रहेंगे? एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, 5 वक्त की नमाज। सहाबी फरमाते हैं कि नमाज में तो जो वजू मेरा रहता वो लंबे वक्त तक रहता, लेकिन जब कभी भी मैं कजाए हाजत के लिए जाना पड़ता पेशाब पाखाना के लिए, उसके बाद फौरन में वजू कर लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम में जो चंद गिने चुने मालदार थे उन मालदार सहाबा इकराम में ये भी शामिल हुए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इसी दर पर रखा। इस दर के ऊपर हम आएंगे اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسلام کے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ پہلے نمبر کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مدینہ کی بستی میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ اکرام بھی تھے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے آئی، اتنی بوڑھی تھی، اس نے ایک لکڑی پکڑی تھی سہارے کے لیے اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے تو کمر سے جھک جاتے، ایک دم جھکی ہوئی کمر تھی۔ اس نے کسی طرح اپنے سر کو اونچا کیا اور حضرت عمر کو دیکھا، اس لیے کہ وہ بیچاری اپنے سر کو جھکا کر چلتی تھی، لیکن جیسے ہی کچھ آواز آئی کہ چند لوگ آ رہے ہیں، دیکھا تو حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کو کہنے لگے، عمر کدھر آؤ؟ حضرت عمر احترام اور عزت کے ساتھ اس عورت کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عورت کیا کہنے لگی کہ بیٹا، یہ لوگ تجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہاں؟ امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن عمر تجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی آنکھ سے ایک دن تیرا ایسا بھی دیکھا کہ تیری بہن تجھ کو جھاڑو سے مار رہی تھی، برابر ہے، پیر میں مار رہی تھی۔ کہاں؟ میں نے دن دیکھا، اور عمر میں نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ خطاب تیرا باپ تجھ کو گھر کے باہر لا کر کے گال پر تماچے مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تو اتنا نکمبا ہے کہ تجھ کو اونٹ چراتے بھی نہیں آتا، برابر ہے؟ ہاں بالکل برابر۔ اچھا تیرے باپ نے تیرا نام کیا رکھا؟ تو کہا عمر۔ کہا نہیں، سوچ برابر، تیرا نام عمر اور ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، لیکن ابو جہل نے اعلان کیا تھا مکہ کے اندر کہ میرا جو نام ہے میرے نام جیسا کسی کا بھی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیرے باپ نے تو تیرا نام عمر رکھ دیا اور ابو جہل نے تو اعلان کر دیا، تو اتنا ڈرتا تھا، تیرے ماں باپ کتنے ڈرتے تھے کہ تیرے ماں باپ نے پھر نقی کیا کہ اب ہمارے بیٹے کو کوئی عمر نہ کہے ورنہ وہ جہل مارے گا، تو تیرا نام بدل گیا، لوگ تجھے کہنے لگے عمیر، برابر ہے؟ کہاں، مجھے اتنا تو یاد پڑتا ہے کہ میری ایک عمرہ کا ایک حصہ تھا جس میں لوگ مجھ کو عمیر کہہ دیں گے۔ کہاں؟ کس وجہ سے؟ ابو جہل کے ڈر سے۔ اور ابھی تجھ کو یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور آج تو لوگوں کے مجمع کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور لوگ تیری آواز سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، بیٹا یہ کس طرح ہو گیا، یہ کس طرح ہوا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، امی جان آپ ہی بتاؤ۔ کہا تجھ کو معلوم ہے میرے نبی نے تجھ کو مانگ کر لیا، تیرے حق میں میرے نبی نے دعائیں کی اور کہا تھا کہ میرے پروردگار دو عمر میں سے ایک عمر کو ایمان کی دولت دے دے اور خاص کر عمر ابن خطاب کو ایمان سے نواز دے، تو تجھے تو مانگ کر لیا، یہ ساری عزتیں تجھ کو عطا فرمائی ایمان کی برکت سے اور دین کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کی برکت سے۔ تو میرے بھائیو، ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، ہمارے سب مسائل کو حل کر دے گا۔ لوگ ایسی ایسی پریشانیوں میں ہوتے ہیں اور ان پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ دوسرا ہی نکال دے، کہیں غیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارا کوئی ایسا عمل کر دو کہ ہم مصیبت سے باہر نکل جائیں۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہیں وہ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، ہم تو الٹے مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ اگر نکل سکتے تو اپنے مسائل سے نہ نکل جاتے، وہ خود تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों हम फिक्र करें, मैंने पहले शुरू में आया था पहली मरतबा तो बयान का वक्त हुआ तो मौलाना ने मुझको कहा कि अब बयान का वक्त हो गया, तो देखा तो यहाँ तीन थे, मैंने कहा कि काम करें यहाँ बैठ जाए नीचे और बात कर ले। शुरू में आजी सबको भी मालूम होगा, तो फिर बाद में दूसरी मतलब आया इमाम साहब थे उस मौके पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि दो एक सफे बनी हुई। इसके बाद फिर इन लोगों ने मेहनत की तो अल्लाह ताला ने कुछ नतीजा तो दिखाया। अभी भी थोड़ी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन माहौल कायम करेगा, बेहतरीन मंजर पैदा होगा। बेचारे मेहनत करते हैं तो हमको मेहनत करने वालों की इज्जत करनी चाहिए। बाकी मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त तक मोहलत देता है जब तक के अल्लाह के हबीब के लाए हुए दीन का हम इकराम करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों दीन इस्लाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया, तुम अपने दीन का इकराम करो, तुम अपने दीन की इज्जत करो। कैसे इज्जत करनी है? अपने दीन की इज्जत करनी है अच्छे अखलाक के जरिए। हदीस के ये अल्फाज हैं, आपने फरमाया कि तुम अपने दीन इस्लाम की इज्जत करो अच्छे अखलाक के जरिए। ऐसे बेहतरीन अखलाक अपने घर के अंदर, खुद अपने में, अपने मासूम बच्चों में, बाहर की जिंदगी में, बाजार की जिंदगी में, हर जगह पर बेहतरीन अखलाक पेश करो। अगर तुम अच्छे अखलाक पेश करोगे तो तुमने अपने दीन की इज्जत की, वरना हमारा दीन लोग क्या कहेंगे कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं, दीन तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने दीन को तो खास इज्जत अता फरमाई, तो हम हमारे जिम्मे जो आता है मेरे भाइयों मस्जिद को आबाद करना, अल्लाह ताला मस्जिद को जो आबाद करता है अल्लाह उनको भी आबाद करता है। और हम अपने मकसद को समझे, मकसद क्या है? गैरों की तरह नहीं, सुबह उठ गए अब बस एक ही कारोबार की धुन और उसी में ही पूरा दिन बर्बाद कर दिया। रात को आए और लेट गए, सो गए, न बच्चों की फिक्र, न खुद अपने दीन की फिक्र। ये तो हमारी जिंदगी है। अल्लाह के नबी एक मरतबा ऐसे गफलत वाले लोग खड़े थे, सब पूरा मजमा था और फौबाश किस्म के लड़के नहीं होते, वो चौराहों पर बैठे रहना, रात को देर से सोना और दो दो तीन तीन घंटों तक मोबाइल लेकर बैठे रहना, जिन्हें कुछ फिक्र नहीं होती, अपनी लाइफ की भी नहीं होती, अपनी भविष्य की भी नहीं होती और अपने दीन की भी नहीं होती, ये अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसे आज भी काफी बच्चे हैं हमारे, ऐसे कुछ लड़के खड़े थे और उन लड़कों में चंद बड़ी उम्र के भी लोग खड़े थे। ये लड़के उनका मजाक कर रहे थे और वो बड़ी उम्र वाले उनका मजाक कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। इतने काफिल लोग थे, इतने काफिल लोग थे। उनके पास में एक बूढ़े मियां खड़े थे, यहाँ एक उन्होंने थैला लटकाया था, हमारे नबी गुजरे, उनसे कोई बातचीत नहीं, एक बूढ़ा जोर से आवाज करके कहने लगा मोहम्मद इधर आओ। हमारे नबी को इन्होंने अभी नबी नहीं माना और हमारे नबी पर ईमान नहीं लाए, कहने लगे मोहम्मद इधर आओ। हमारे नबी आ गए, कहने लगे कि तू ये कहता है कि तू अल्लाह का नबी है? कहा हां मैं कहता हूं। तो उसकी हरकत देखो, उसने अपने बगल के अंदर जो थैला लटकाया था हाथ को ऐसे नीचे करके उसने नीचे गिरा दिया, उसमें से क्या निकला? वो निकली वो देखियो क्या आपको चपटी आती है, चपटी वैसे दूर से खूबसूरत दिखाई देती है, अरब के अंदर इसका शिकार करके लोग खाते थे और एक गौ को तलाश करने के लिए पूरा पूरा दिन भटकते हुए रंग के अंदर। उसने जैसे ही थैला नीचे गिराया उसमें से गौ बाहर निकली, लेकिन वो तो मर चुकी थी, उसमें कोई सांस नहीं था, वो मुनी गिरी। अब बच्चे सीटियां बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। हमारे नबी को क्या कहने लगा कि देख मजाक में, मजाक में, यकीन से नहीं, मजाक में कहने लगा वो बुरा कि एक वो है, तू कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर तू इस वो से कहलवाए कि तू अल्लाह का नबी है तो जा तेरी बात मान लेंगे, मजाक में कह रहा है। तो हमारे नबी ने देखा वो मरी हुई थी, आपके पास एक लकड़ी थी, वो लकड़ी से उसके सर पर ऐसे टच किया देखने के लिए कि आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। आप नीचे बैठ गई और बैठ करके उस गोल को आपने फरमाया, मौजिजा, अल्लाह के हबीब का मौजिजा, आपके मौजिजा 2000 से ज्यादा। जब इतना बड़ा चांद दो टुकड़े हो सकता है कि नासा वालों ने भी मान लिया कि ये चांद कभी टूटा था, आप नीचे बैठते हैं पर बैठ कर कहने लगे अयो हसबो, ए गो, जैसे ही आपने गो कहा उसने आंखें खोल दी। आंखें खोल कर, जानवर तो बोलते नहीं, जानवर बोलते नहीं, अपनी अपनी जो अल्लाह ताला ने उनको जो आवाज दी है वो आवाज कर ले, बाकी इंसानों जैसी आवाज और इंसानों जैसी बोली तो नहीं होती उनकी। उस गोर की जबान से आवाज आई, लब्बैक व सअदैक या रसूल, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि आप इमामुल अंबिया हो, आप नबियों के नबी हो और आपने अपनी जबान मुबारक से मेरा नाम लिया, तो मेरे लिए इससे बढ़कर क्या सआदत हो सकती। उल्टी वो राजी हो गई कि नबी ने मुझको कहा, तो आंख खोली और सीधी बैठ गई। जब बैठ गई तो आपने उसको जो ये बुरा पूछ रहा था वही बात आपने उसको पूछी कि मैं कौन हूं, तू बता सकती है, तू कह सकती है मैं कौन हूं। तो वो अपनी जबान से आवाज करने लगी कि इन्नकल रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद जो उसने कहा, खाली गवाही नहीं दी, वो तो सब बेचैन हो गए, ये तो जादू जैसे, इसलिए अल्लाह के नबी को कभी कहते तो जादू बताता, तो सब सरेंडर हो गए और नजदीक आ गए, देखने लगे, उसकी आवाज सुनने लगे, हमारे नबी के सामने देखकर कहने लगी कि अगर तेरा इनमें से जिस किसी ने मान लिया वो तो कामयाब हो जाएगा और उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, और अगर आप पर इनमें से जो ईमान नहीं लाया और आपकी मुखालफत की और आपका पीछा किया तो उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो। बस इतना कहकर के आंखें बंद कर ली और जैसे पहले मरी हुई थी बस वैसे ही वो मुर्दार शक्ल में वो फिर से हो गई। अल्लाह के नबी ने वो बुरा तो एकदम रोने लगा, हमारे नबी के पास आया, हाथ पकड़ लिया, आपने फरमाया अब क्या कहेगा तू, अब क्या कहेगा, तूने मुझे कहा हो गया। वो बुरा कहने लगा कि ठीक है, अब तूने कर ही लिया और उसको बोलने पर मजबूर किया, तो अब मैं मान रहा हूं कि तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का रसूल है। अपने मकसद को ये गो तो मुकल्लफ, मुकल्लफ का क्या मतलब, अल्लाह ने उसको पाबंद नहीं किया, जानवरों को पाबंद नहीं किया, लेकिन जानवर अल्लाह तबारक व तआला के मुती और फरमाबरदार, सब अल्लाह की इबादत करते हैं। उसने अपना मकसद समझ लिया कि मेरा मकसद क्या है, तो हमारा भी बहुत बड़ा मकसद है मेरे भाइयों, हम अपनी भी फिक्र करें, हमारे मासूम बच्चों की भी फिक्र करें, हमारी जवान बेटियों की फिक्र करें। औरतों के अंदर जितनी दीनदारी होगी उनकी दीनदारी की वजह से आपकी जो छोटी बच्चियां हैं उनमें भी दीन आएगा, आपके बच्चों में भी दीन आएगा। और अगर हमारी माएं और बहनें ही गफलत वाली जिंदगी गुजार रही हैं, तो मेरे भाइयों हमारी औलाद के अंदर दीनदारी नहीं आ सकती। तो उनको दीनदारी कौन सिखाएगा? माँ और बहनों को कौन सिखाएगा? आज हमारी माँ बहनों के अंदर कितनी भी सलाहियत नहीं है कि जो दीन की बात उनको कही जाए तो कम से कम समझें। क्यों? इसलिए कि गफलत वाली जिंदगी चल रही है। अब बेचारी उन्हें क्या मालूम, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। हम अपनी जिम्मेदारी चूक गए, हम अपनी जिम्मेदारी में काफिल साबित हुए। बाकी कितनी जगहों पर मस्कुरात में बात होती है तो वो हमसे ज्यादा समझ जाती है। जो पढ़े लिखे मर्द होते हैं, पढ़े लिखे और सुध-बुध वाले मर्द होते हैं, उनसे ज्यादा दीन की बात मस्कुरात समझ जाती है। क्यों? इसलिए कि वो आदि बन गई, उनको पहले से आदत है और उनके कानों में दीन की बातें बार बार आती गई। और बार जगहों पर तो गुजराती में भी नहीं समझती। कितने ऐसे इलाकों में, दूसरे गांव में मुझे खुद ये देखने मिला कि गुजराती में भी बात नहीं समझ पाती, इसलिए कि हमने पहले से उनको दीन की बात का आदि नहीं बनाया। तो ये मेरे भाइयों, ये सब हमारी गफलत है। हम अपनी जिम्मेदारी चुके हैं, इसलिए हमारी माँ बहनों में भी बेहतरीन माहौल बने और हमारी माँ बहनों के अंदर भी दीनदारी आए, ये भी हमारी फिक्र है। इसके लिए सबसे पहले तो हमको पाबंद करना पड़ेगा। तालीम होती है कौन से वक्त में? असर के बाद। तो मजमा तो होता होगा, माशाल्लाह सुनने वाले तो होते होंगे। हाजी साहब बहुत फिक्र लेने की जरूरत है आपको भी। असर के बाद जो होते ही तालीम, तो मेरे भाई और तालीम में बैठे बच्चों को भी मिलना है। तालीम इतनी मुकद्दस किताब है, इतनी मुकद्दस किताब है, अल्लाह के नबी की दुआ लगी थी आपको। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला हमेशा उस आदमी को खुश रखे, आप दुआ समझो, पर हमारे नबी ने दुआ दी कि अल्लाह ताला हमेशा उस आदमी को खुश रखे और तरोताजा रखे कि जो मेरी बात को सुने। किताब के अंदर जो तालीम होती है हमारे नबी की बातें, सब हमारे नबी की बात है। तो 5-10 मिनट कुर्बानी दे करके आप बैठोगे, इतनी बड़ी दुआ मिलेगी, अल्लाह तुमको भी खुश रखेगा और तुम्हारी नस्लों को भी खुश रखेगा और अल्लाह ताला दुनिया के भी बिगड़े हुए मसाइल को आसान कर देगा, दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में चैन और सुकून वाली जिंदगी अता करेगा अगर हमने दीन की बात को सुना, अल्लाह के हबीब की बात को सुना। तो हम अपने आप को थोड़ी देर कुर्बानी दे करके, मोहताज समझ करके तालीम के अंदर बैठे। घरों के अंदर भी बहुत जरूरी है, घरों के अंदर भी अगर ये तालीम कुछ घरों के अंदर होती होगी और कुछ माँ बहने पढ़ी लिखी भी होगी और फिक्रमंद भी होगी, अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत भी अता फरमाई है कि वो दूसरी 5-10 बहनों के ऊपर मेहनत भी कर सकती है। ऐसी सलाहियत वाली औरतें भी बस्ती के अंदर मौजूद होंगी। तो हम हर घर के अंदर फिक्र करें कि कम से कम तालीम जिंदा हो, हमारी माँ बहनें तालीम सुनेंगी, दीन की बात सुनेंगी, इंशाल्लाह उनके सामने आखिरत भी आएगी। हमने आखिरत को पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। जन्नत मुस्तकिल एक सब्जेक्ट है और दोज़ख भी एक सब्जेक्ट है। जैसे स्कूल के अंदर मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, साइंस एक सब्जेक्ट होता है, इस तरीके से जन्नत भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर वो हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो फिर हमारे दिल दिमाग में शौक शौक पड़ेगा और नेक काम करने का दाइया पैदा होगा। और जहन्नम को सुनेंगे तो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और ये सब कहाँ है? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर आएंगे, ये सब कुछ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहाँ भेजा है, उस मकसद को समझने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए और आबाद करने वालों को भी आबाद फरमाए। अल्लाह इस बस्ती की हिफाजत फरमाए, बस्ती वालों की भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों में बड़े बड़े उलमा पैदा फरमाए कि जो पूरे आलम के अंदर दीन की बात को लेकर चलत फिरत करें اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کو راہ راست پر لانے کی فکر کریں کہ ہماری دعائیں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ دو مہانہ مشورہ ہوتا ہے، اب کی بار مشورے سے ہماری مسجد رنجیت پور میں رکھا ہے اتوار کے دن، کل کا دن چھوڑ کر۔ اس لیے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جتنا بھی نوجوانوں کا طبقہ ہے، بڑوں کا طبقہ ہے، وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جب تک دعا نہ ہو پورا مجمع اس چھوڑ کے اندر شرکت دے۔ کون کون کرے گا بھائی، دل سے کہہ رہے ہو؟ کہو نا انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ ہم کی بار وہاں اسماعیل صاحب نے یہ بات سب جگہ پہنچائی ہے کہ بھائی دیہاتوں کے اندر بھی اس بات کی بھی پوری توقع کی جائے، کتنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اور کتنے گھروں میں چھ صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتاؤ کون کون ساتھی کے گھر میں الحمدللہ فضائل اعمال کی تعلیم شروع کی ہے، ہمیں مشورے میں اس کو دینا ہے رویوار کے لیے۔ میرے گھر میں الحمدللہ پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بولو بھائی، عمران کے بعد، عبدالسلام بھائی کے بعد دو، سراج بھائی کے بعد تین، ربیقہ جی کے بعد چار، اقبال جی کے بعد پانچ، فیروز بھائی کے بعد چھ، فیروز جی کے بعد سات، اور بولو بھائی، یہ تو ناموسی کی بات ہے، کیا کریں گے؟ اتنا کتنے مکان ہیں اور تعلیم کتنے گھروں میں ہو رہی ہے؟ ہر جوڑ میں یہی آتا ہے، دو گھر تین گھر، دو گھر تین گھر، تب بڑھائیں گے ہم، تب فکر کریں گے۔ یہاں تو ہم سن لیتے ہیں آگے، ہماری بہنوں کا کیا، ہماری عورتوں کا کیا؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب تک گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوگی عورتوں میں دین نہیں آ سکتا، اور ہم خود دیکھ لیں ہماری عورتوں کا حال۔ کل مکان کتنے ہمارے وہاں؟ 80 کے قریب ہے، اور تعلیم کتنے گھروں میں؟ کہ 7 گھروں میں۔ کون فکر کرے گا؟ وہ جو آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ اسے جن کے گھروں میں ہو رہی ہے طے کرو کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں گے، اور جن کے گھروں میں نہیں ہے وہ آج سے ہی فکر کرے، بظاہر عمل کی تعلیم نہ ہو تو یہیں سے لے جائے، کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے جہاں ہماری جوان بچی اور ہماری جوان بہنیں گجراتی نہ پڑھی ہو۔ اب تو ماشاءاللہ 10ویں 8ویں والے بچے بھی ہماری گجراتی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک وقت طے کرو، اسی وقت میں ہمیں تعلیم کرنا ہے۔ میں نے ان ساتھیوں کو کہا تو شروع میں بوجھ محسوس ہوا کہ مولانا صاحب کیا کریں گے، میں نے کہا تھوڑا دل پر لے لو، ہم عشاء کے بعد گپ شپ میں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، ایک 5-7 منٹ روزانہ ایک حدیث پڑھو۔ الحمدللہ 2 ہفتے سے ترجیح دیتے 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 7 گھروں کی تعداد آئی، اور اگر آئندہ اسی ہفتے سے آپ شروع کرو گے ہو سکتا ہے 14 گھروں میں تعلیم ہو۔ بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتوار کے دن جوڑ ہمارے وہاں ہے، ہماری مسجد میں ظہر سے عصر تک گودرا سے ذمہ دار بھی آئیں گے، ہر حلقوں سے مسجد جماعت کے ساتھی بھی آئیں گے، اس لیے ہمیں ان کا نظم بھی ہمیں سوچنا ہے، اس لیے ہمارے ساتھی نماز کے بعد بیٹھے بھاگ نہ جائے، سب چلے جاتے ہو پھر یوں کہتے ہو اچھا ہمیں تو کچھ پوچھوں نہ، تو تم دیکھا تھا تو میں پوچھوں، اس لیے تو میں کہہ رہا بیٹھو، سب کی مشورے سے کام ہو اور اسی میں خیر ہے۔ اسی لیے دیکھو ان باتوں کی ہمیں پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک تو گھروں کی تعلیم کرتے ہو نیت انشاءاللہ، کون کون کرتا ہے؟ اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرما، ہر گھروں میں ہونی چاہیے۔ گزشتہ بھی ماشاءاللہ بات آئی، میں نے گزشتہ بات رکھی تھی مگر مہارا کی مشغولی کی وجہ سے میں اس کو نہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مغرب کے بعد تفصیل ہوتی ہے، اور میری بھی تمنا تھی کہ مہارا ہمارے مستورات میں کچھ نصیحت کرے، اور ہماری عورتوں کے دل الحمدللہ بہت نرم ہے، بہت جلدی اثر لے، پر مشغولی اس لیے کہ ہم اس کو نیٹو کر رہے ہیں، آئندہ کبھی موقع ہوگا کہ انشاءاللہ حضرت کو بلائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھو کل سے ظہر سے پہلے سارے کام نمٹا دو، پھر یوں نہ ہو کہ بولچا میں تو وہاں چلا گیا تھا مجھے پتا نہیں تھا، وہاں نہیں تھا یا تعداد مجھے بڑے جی پور کے کتنے کے 5 تو باقی کہاں چلے گئے، قبرستان کہاں چلے گئے؟ مجمع تو ہمارا زیادہ ہونا چاہیے، جس مسجد میں جس وقت کا جوڑ ہو ہر نوجوان طبقہ اس میں اپنی حاضری دے، تاکہ ہمیں کام سمجھ میں آئے کہ کام ہمیں کس نہر پر کرنا ہے۔ جب تک وہاں ابراہیم صاحب اکثر فرماتے ہیں جب تک کام کو سمجھو گے نہیں اور جب تک کام کو صحیح طریقے پر سے کرو گے نہیں تم اپنی مرضی پر کرو گے، اور جب اپنی مرضی پر کرو گے تو ہدایت نہیں پھیلے گی فتنے پھیلیں گے، اور ظاہر بات ہے ساتھ دو گے، اس لیے ہمارے ساتھی بھی بیٹھے ہمیں مشورہ بھی کرنا ہے۔
इसलिए अब तमाम साथियों से दरखास्त है, देखो मौलाना शुरू से यह बात कही कि जुमा के दिन तो कम से कम मजमा अजान होते ही पहले आ जाए, बहुत बड़ी फजीलत है। मुझे तमन्ना थी कि कुछ और नसीहत करे, मगर घड़ी भी जवाब दे रही और आपके पेशानियों के बल भी जवाब दे रहे थे कि अब बस करे तो अच्छा, क्योंकि हम आदि नहीं है नहीं बैठने के। अभी बाजार छोड़ दो, असर का चली जाएगी, मगरिब का जाएगी, ईशा का जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह के घर में बैठने के आदि बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दिल मस्जिदों में अटकेगा। और हज़रत शेख ने लिखा है, जिस इंसान को मस्जिद से कसरत में आते जाते देखो, ईमानदार होने की गवाही दो, ये मुत्तकी है, ये मस्जिद का खूंटा है। अब आप कहोगे तू भी शुरू हो गया, इतनी बात तो मैंने सुनी, अब तेरी सुने, दुआ पढ़ लो, मगर इस बात को जहन में रखो, हर घरों में तालीम की तादाद हमें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथियों ने कहा हमारे यहाँ फजाइल अमल, मैंने कहा यहाँ से ले जाओ, और बहुत साथियों ने तो अपने औरतों को समझाया कि जो हमारू का काम तो तने कहवा लू, तू नमाज नहीं पढ़े के पढ़े तो पची ऊपर में मसलो उतारो, तो औरतें डर गई कि ना यार शोहर तो हमें कहता है इसलिए हमें तो पढ़नी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी उनको समझाओ। दुनिया में कपड़े नहीं मिलते तो पेशानी पर बल आ जाते हैं, स्त्री टाइट नहीं मिलती तो हमारा मूड खराब हो जाता है, मगर तालीम नहीं होती तो कभी हमने सोचा कि आज तालीम नहीं हुई? असल फिक्र इस चीज की है। और दीन मौला इब्राहिम साहब कहते हैं, तुम जब तक अपने आप को दीन के हवाले नहीं करोगे दुनिया का मसला हल होने वाला नहीं है, पहले दीन है फिर बाद में दुनिया है। अल्लाह पाक कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब करूंगा।